तारीख 6 जनवरी दिन सोमवार, कार्यक्रम दिनभर के साथ मैं हूं मानसी दास। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा, नेताओं ने पूछा।
दिस इज अ फैसिस्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एब्सोल्युटली वी हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स एवरीवेयर इट इज गोइंग ऑन। लखनऊ में देख, व्हाट इज गोइंग ऑन मुरादाबाद।
तो ये तो मुझे 26 नवंबर की
8 फरवरी को होंगे दिल्ली में चुनाव, क्या आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाएगी बीजेपी?
ये दिल्ली का जो नेतृत्व है बीजेपी का, उनको अरविंद केजरीवाल को मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ पर बालाकोट नहीं चलेगा, यहाँ पाकिस्तान नहीं चलेगा।
जानेंगे क्या हो रहा है ईरान इराक में और सुनेंगे आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम की तोड़फोड़ और हिंसा के बाद आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के गेट के बाहर करीब 700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जेएनयू हिंसा मामले की जाँच क्राइम ब्रांच करेगी, साथ ही पुलिस ने आज मौके का मुआयना करके अहम जानकारियां भी जुटाई हैं। रविवार शाम को जेएनयू परिसर में नकाब लगाए लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जेएनयू के कई छात्र और शिक्षक घायल हो गए। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी तादाद में लोगों ने जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। सुलेमानी बगदाद में अमरीकी हमले में मारे गए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के नेतृत्व में सोमवार को तेहरान में जनाजे की नमाज अदा की गई। इसमें राष्ट्रपति हसन रूहानी, मुख्य न्यायाधीश, संसद के स्पीकर अली लारिजानी सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। यह फोर्स ईरान के विदेशों में चल रहे सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जंगल की आग से हुए नुकसान से देश को उबारने में मदद के लिए 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया है। स्कॉट मॉरिसन आग से हुए जानमाल के नुकसान के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा करते हुए कहा। देश को इस नुकसान से उबारने के लिए अगले 2 सालों में 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दिए जाएंगे। ये सिर्फ उन इलाकों के लिए नहीं होगा जहां पर आग लगी हुई है, ये उनके लिए भी है जहां पहले आग लग चुकी है, खासतौर पर क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। ये थे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के वित्त मंत्री बार्नो ले मैर ने कहा है कि अगर अमेरिका फ्रांस पर व्यापार प्रतिबंध लगाता है तो फ्रांस उसका जवाब देगा। इससे पहले फ्रांस ने गूगल और अमेज़न पर नया डिजिटल कर लगाया है। इसके बाद अमेरिका के फ्रांस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई जा रही है। फ्रांस में रेडियो पर बोलते हुए बार्नो ले मैर ने अमेरिका से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में समझौता करने की दिशा में समझदारी दिखाने और काम करने की अपील की। इस साल फ्रांस ने दूसरे देशों की ऐसी कंपनियों पर 3% कर लगाना शुरू कर दिया है जो फ्रांस में सेवाएं दे रही हैं। बर्नो लेमेर ने यह भी कहा कि फ्रांस संभावित अमरीकी प्रतिबंधों को लेकर विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ से चर्चा करेगा। हमारे अमरीकी दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसके आसार दिख रहे हैं तो हम इसे बेहद गंभीरता से लेने वाले हैं। हम तुरंत विश्व व्यापार संगठन से संपर्क करेंगे। मैं कल यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर फिल होगन से मिलने वाला हूँ और हम चर्चा करेंगे कि अमरीकी प्रतिबंधों का जवाब किस तरह दिया जा सकता है। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री बर्नो ले मैर के शब्द। कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोन के जापान से लेबनान भागने से जुड़ी और जानकारियां सामने आ रही हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक कार्लोस गोन टोक्यो में अपने घर से निकलने के बाद 2 लोगों से मिले थे और उनके साथ ओसाका तक बुलेट ट्रेन में यात्रा की थी। तीनों लोग कांसाई एयरपोर्ट के पास होटल के अंदर जाते दिख रहे हैं। हांगकांग में चीन के नए शीर्ष अधिकारी लुओ खुएनिंग ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों से सही रास्ते पर वापस लौटने की अपील की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की खबर से, जहां कल रात 50 से अधिक नकाबपोशों ने जेएनयू विश्वविद्यालय परिसर और हॉस्टलों में घुसकर छात्रों और शिक्षकों को पीटा। इन नकाबपोशों के हाथों में लाठियां और लोहे के रॉड थे। जेएनयू के छात्र संघ ने हमले का आरोप बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर लगाया है, जबकि एबीवीपी ने इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के छात्रों को जिम्मेदार बताया है। इस पर सियासत भी गरमा रही है। जेएनयू में फिलहाल क्या ताजा हालात हैं, ये जानने के लिए अब से घंटे भर पहले मैंने बात की वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से।
देखिए, हालात ऐसा है कि जेएनयू में जाहिर है कि जितने भी छात्र हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है। वो कहते हैं कि इतने साल वो मौजूद रहे, यहाँ कभी इस तरह की कोई हिंसा नहीं हुई इस तरह की, जबकि लोग लाठी भाले तरह तरह के हथियार, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खाना बनाने वाले हथियार लेके आए, हथौड़ों की भी बात कही जा रही है और तेजाब लेकर के पत्थरों से। तो इस तरह का जो हमला हुआ छात्रों को, जिसमें ऊपर से फेंक दिया गया, अंधे छात्रों के साथ मारपीट हुई, तो आज जो फिर उसके बाद जो है वो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक ह्यूमन चेन बनाया, जो कि कल साबरमती हॉस्टल जहाँ की ज्यादा बड़ा हमला जहाँ हुआ, जो ये नकाबपोश लोग आए हुए थे उनकी तरफ से, तो वो यहाँ से गेट तक गए। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो जेएनयू की जो अध्यक्ष हैं छात्र संघ की, उनके द्वारा, जिनको खुद कल चोटें आई थी और वो इसमें भर्ती थी, उन लोगों की मांग ये है कि पहली बात तो जो वाइस चांसलर हैं वो उससे या तो इस्तीफा दें, नहीं तो जो मंत्रालय है शिक्षा विभाग वो उनको हटाए, और पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। वो कल छात्रों की मदद करने के बावजूद उन पे लाठी बरसाए और साथ साथ जो लोग हमलावर थे वो 3 घंटों तक हमला करते रहे लेकिन निकल गए। 8 तारीख को एक नेशन वाइड बंद की बात कर रहे हैं, जहाँ की सारे छात्र संघ मिल के एक पूरा राष्ट्रव्यापी बंद करेंगे।
फैसल जी, वहाँ पर कल से जो है वीसी यानी कुलपति का नाम बार बार आ रहा है कि वो कल पूरे शाम सवाल उठता रहा कि वीसी कहाँ है, और वीसी थे नहीं, ना उन्होंने पुलिस को उस समय अंदर आने दिया, और पुलिस के आते आते भी जितना जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अभी फिलहाल वीसी कहाँ है, क्या कर रहे हैं और उनका क्या कहना है?
हम भी यही जानने की कोशिश, हम बिल्कुल जेएनयू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसमें वाइस चांसलर के ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, उनके दफ्तर गए थे। यहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सारा दफ्तर बंद है, एक सिक्योरिटी का हमला वहाँ मौजूद है। हम यहाँ के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज पी के तिवारी, जिनका नाम हमें बताया गया, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ जो सवाल छात्र उठ रहे हैं, 3 घंटे तक ये सारा हमला होता रहा और कहाँ थे जो सिक्योरिटी के स्टाफ, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो हम वहीं मौजूद हैं, वो कहाँ है ये हमें भी नहीं पता है और बाकी लोग भी शायद उनकी तलाश कर रहे हो।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। इधर सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है और केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। कल रात जेएनयू में क्या क्या हुआ और इस घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, सुनते हैं बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
कल रात करीब 8 बजे के आसपास जेएनयू से खबरें आने लगीं कि लाठी और डंडों से लैस कई नकाबपोशों ने हॉस्टलों पर धावा बोला है और छात्रों को पीट रहे हैं। इधर पुलिस जेएनयू के गेट के बाहर थी, जिसका ये कहना था कि जब तक जेएनयू प्रशासन इजाजत नहीं देता हम परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। यही स्थिति 2-3 घंटों तक बनी रही और जेएनयू में हिंसा का खेल चलता रहा। बाद में देर रात पुलिस यूनिवर्सिटी के परिसर में दाखिल हुई और फिर मामला कुछ शांत हुआ। हमले में घायल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने बताया कि उन्हें उस दौरान निशाना बनाया गया जब वो परिसर में शांति मार्च में हिस्सा ले रही थी।
जब हमें घेर लिया, पहला बाड़ी आयरन रॉड का मेरे सर के ऊपर पड़ा, शाउटिंग एट देम कि आप ऐसे नहीं मार सकते, आप यहाँ से हटिए, आप मार नहीं सकते इस तरीके से, एंड कंटिन्यूअसली आयरन रॉड मेरे सर पे मारा गया।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो मामले की पूरी जांच कर रही है और जल्द ही हमलावरों की पहचान भी कर ली जाएगी। वहीं बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं।
The Home Ministry has ordered an inquiry and I'm very confident that once the facts come out, appropriate and the severest action will be taken in the matter.
जेएनयू में जो कुछ हुआ उसके पक्ष में देश भर में कई विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, भोपाल, कोलकाता, लखनऊ और कई जगहों पर जेएनयू के छात्रों के समर्थन में लोगों और छात्रों ने प्रदर्शन किए। इधर विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और उससे संबंधित छात्र संगठन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा,
अगर इन गुंडों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नियंत्रण में है तो यही माना जाएगा पूरे देश में और विश्व में कि ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। ये माना जाएगा कि उन्होंने करवाया है, अगर ऐसा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे छात्रों पर फासीवादी सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रही हैं।
दिस इज अ फैसिस्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एब्सोल्युटली वी हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स एवरीवेयर इट इज गोइंग ऑन। लखनऊ में देख, व्हाट इज गोइंग ऑन मुरादाबाद।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मांग की है कि जेएनयू के कुलपति को तुरंत हटाया जाए।
हम पहले कह रहे हैं कि वाइस चांसलर को हटाओ।
वहीं कभी बीजेपी की साथी पार्टी रही शिवसेना, जो आज महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है, उसने स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह का कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। ऐसे हमले तो मैं तो मार्च में नहीं बर्दाश्त करूंगा।
इस बीच मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जेएनयू में छात्रों पर हुए हमले को सदमे में डालने वाला बताया है और दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। एमनेस्टी ने कहा कि ये सब अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार के प्रति शर्मनाक उदासीनता दिखाता है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर। इधर इस पूरे वाकये में बीजेपी से जुड़े एक छात्र संगठन EBPP का नाम सामने आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से और पूछा कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि यह हमला पूरी तरीके से सुनियोजित था, क्या बोलती हैं वो?
मैं तो खैर ABBP का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ABBP जो है वो बहुत एक्टिव रही है JNU कैंपस में, भले ही चुनाव जीत नहीं पा रही है लेकिन और अन्य तरीके से बहुत एक्टिव है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो जिस ढंग से उमर खालिद और कन्हैया कुमार पे जो भी बवाल हुआ उसके पीछे तो डेफिनेटली ABBP का हाथ है। और अगर आप उनके RSS के जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उसको देखेंगे तो उस सब में ये क्या कहते हैं, एक चेतावनी सा आ रहा था कुछ दिनों से। अब भाई ऐसे बात है कि लोग ने शायद बहुत सीरियसली ना लिया हो, लेकिन वहाँ के जो यूनियंस हैं, जो लेफ्ट और ISA वगैरह, उन्होंने तो जरूर सीरियसली लिया होगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने में जो हिंसा हुई है इसको अब हम इक्का दुक्का इंसिडेंट नहीं है, जैसे पहले पहले होता था, कुछ बवाल होता था इधर उधर। ये लार्ज स्केल में जिस ढंग से हुआ है ये जरूर सुनियोजित तरीके से ही हुआ है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चुप रही, पुलिस चुप रही, बल्कि अभी जो सबूत आ रहे हैं उससे ये भी संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने सहायता भी किया है जिन लोगों ने आक्रमण किया है वो निहत्थे निर्दोष छात्रों पर। ऐसे नहीं कि दो गैंग के बीच में कुछ वो लड़ाई हुआ, ये नहीं, ये बिल्कुल कोई गैंग वॉर नहीं था, ये एक तरफा हिंसा हुआ है जो छात्रों पे। छात्रों के पास क्या होता है, उनके पास क्या हथियार होता है क्या? हाँ, कुछ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं या ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ वायलेंट तरीके अपनाते होंगे, लेकिन ये तो बेचारी लड़कियां हैं, वो हॉस्टल में ये कमरे में जाके उनकी पिटाई करना क्या मतलब है? ये बिल्कुल प्लान तरीके से हुआ है, नो डाउट एट ऑल।
विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज कहा कि 22 फरवरी से पहले यहां नई सरकार का गठन होना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक चरण में मतदान होंगे और मतदान शनिवार 8 फरवरी को होंगे। मतों की गिनती का काम 11 फरवरी को होगा। दिल्ली में फिलहाल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है और माना यह जा रहा है कि उसे बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से मिलने वाली है। लेकिन देखा जाए तो दोनों पार्टियों के पास इस बार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं, यही जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा से।
देखिए, इलेक्शंस के दौरान ताकत का अंदाजा लोगों की गुडविल से पता चलता है और आज के दिन व्यापक स्तर पर लोग इस बात को मानते हैं, वो लोग भी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहे माजी में पहले, कि इस सरकार ने काफी काम किया है बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और यही जो मुद्दे होते हैं जो जनता को टच करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका पहला बयान था कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी के लिए कुछ नहीं किया, तो वो बयान लोग मानेंगे नहीं। ये दिल्ली का जो नेतृत्व है बीजेपी का, उनको अरविंद केजरीवाल को मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ पर 370 नहीं चलेगी, यहाँ पर बालाकोट नहीं चलेगा, यहाँ पाकिस्तान नहीं चलेगा। चंदी के लेवल पर आम आदमी पार्टी बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है।
सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, उसके बाद से उनके बहुत से करीबी साथी उनको छोड़ के गए हैं और उन पर फैसले थोपने का भी आरोप लगा है।
देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के पहले चार बरस बहुत ही, मैं समझता हूँ, व्यथा में गुजरे, क्योंकि उस वक्त तक कोर्ट ने जो सेपरेशन ऑफ पावर दिल्ली की सरकार में और केंद्र की सरकार में, उसको क्लेरिफाई नहीं किया था। पिछले एक बरस पहले जब कोर्ट ने ये बता दिया कि किन क्षेत्रों में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी चलेगी और किन क्षेत्रों में केंद्र का प्रभाव रहेगा उनकी चलेगी, तब से उसने बहुत व्यापक स्तर पर काम किया है। जो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये बात सच है कि बहुत से उसके साथी उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने से अरविंद केजरीवाल का जो पब्लिक कनेक्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये बात साबित हो गई जब असेंबली इलेक्शन हुए थे दोबारा, उससे पहले भी लोग उनको छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद भी वो इतने व्यापक स्तर पे इतनी भारी मेजोरिटी से जीते। आज के दिन सवाल ये है, आज के दिन अभी सवाल ये है कि क्या वो पिछली बार की तरह उसी मेजोरिटी से जीतेंगे या पहले से सीटें उनकी कम होंगी।
तो क्या लगता है आपको, उसी मेजोरिटी से जीतेंगे या फिर
लगभग? मुझे अरविंद केजरीवाल मुझसे पूछ रहे थे भी कितनी सीटें आप मुझे हमें दे रहे हैं, तो मैं कहा जी आपको हम 40 प्लस तो दे रहे हैं। कहता आप तो कम दे रहे हैं, हम तो 50 प्लस की अपेक्षा कर रहे हैं। वो तो उसने मजाक में कहा था ना एक जगह पर हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन तो ये होगा अब की बार 3 बार।
सर, आपने बीजेपी के जितने मुद्दे संभव थे चुनाव में, सब मुद्दे आपने गिनवाए कि ये मुद्दा दिल्ली में काम नहीं करेगा, लेकिन अब बीजेपी के पास कौन सा वादा रह गया है जिसे लेकर वो जनता के पास जाएगी?
मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं स्ट्रॉन्ग करना चाहता भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुझे प्रोत्साहित करे कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट डालूं। मतलब मैं जब कहता हूं तो जनता की बात कर रहा हूं, और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारी पड़े उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का व्याख्यान अरविंद केजरीवाल अपनी पब्लिक स्पीचेस में करते हैं, अपनी पब्लिक मीटिंग्स में करते हैं। लेकिन देखिए, काम के बल पे तो शीला दीक्षित भी लड़ी थी, 3 बार जीती थी। अरविंद तो अभी फुल टर्म के लिए तो एक ही बार जीते हैं, वैसे तो उनकी दूसरी जीत है, तो शीला दीक्षित के साथ मैं समझता हूँ कि तीसरी बार जीत की संभावना मुझे नजर आती है।
दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार क्या होंगे मुद्दे, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान के आला सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद उनके जनाजे में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई भी उन्हें अंतिम विदाई देने तेहरान पहुंचे। शुक्रवार को अमेरिका के एक हवाई हमले में इराक में जनरल सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। जनरल सुलेमानी के पार्थिव शरीर को मंगलवार को करमान में दफनाया जाना है। इधर जनरल की मौत के बाद अमेरिका और इराक में भी तनाव बढ़ गया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
जनरल कासिम सुलेमानी का पार्थिव शरीर आज इराक से ईरान के तेहरान पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कें खचाखच उन लोगों से भर गईं जो उनके जनाजे में शामिल होने आए थे। देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनका गला भराया और आंसू निकल आए। शुक्रवार को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हुए एक अमरीकी हवाई हमले में सुलेमानी समेत 5 ईरानी और 5 इराकी लोगों की मौत हो गई थी। सुलेमानी ईरान की बहुचर्चित कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। यह फोर्स ईरान द्वारा विदेशों में चल रहे सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा। ईरान में सुलेमानी किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन अमरीका उन्हें अपना मुख्य विलेन मानता था। अमरीका का कहना था कि कमांडर सुलेमानी सक्रिय रूप से इराक और उससे लगे क्षेत्र में अमरीकी राजनयिकों और सेवा सदस्यों पर हमला करने की योजनाएं विकसित कर रहे थे, जिस कारण उनकी हत्या करनी जरूरी थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one.
मेरे आदेश पर कल रात अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक एक हमले में दुनिया के सबसे बड़े चरमपंथी कासिम सुलेमानी को मार दिया है। सालों तक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स और उसकी घातक कुद्स फोर्स ने सुलेमानी के नेतृत्व में हजारों अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों को मारा है।
हालांकि इसके बाद अब मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 2015 में 6 पश्चिमी देशों के साथ हुआ परमाणु समझौता अब वह नहीं मानेगा। उसने समझौते के तहत लगी किसी भी तरह की पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया है। अमरीका इस करार से पहले ही हाथ पीछे खींच चुका है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। जनरल सुलेमानी की हत्या इराक में हुई है, जहां इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए अमरीका ने सैन्य अड्डा बनाया था। ये बड़ी संख्या में अमरीकी सैनिकों का भी ठिकाना है। इराक की संसद में प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने प्रस्ताव दिया कि अमरीका ने इराक को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है और इसके बाद अब अमरीकी फौजों को इराक से बाहर निकल जाना चाहिए। संसद ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार और फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुवाफाक अल रुबाई कहते हैं,
There is no shadow of doubt in my mind that the assassination or the murder.
मेरे मन में इसे लेकर कोई शंका नहीं है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या मध्य पूर्व के लिए एक नया अध्याय साबित होगा। ट्रंप ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है और मध्य पूर्व में बिना उकसावे के हिंसा को बढ़ा दिया है। ये इराक ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अमरीकी सेना की मौजूदगी के अंत की शुरुआत है। उन्होंने एक लंबे युद्ध को हवा दे दी है। मैं आपको बता सकता हूं कि अमरीका ने यहाँ काफी कुछ दाव पर लगाया है, लेकिन अब उसके कोई मायने नहीं है।
लेकिन क्या इराक के कहने भर से अमरीका मध्य पूर्व से बाहर चला जाएगा? अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उनके सैनिकों को बाहर जाने के लिए कहा गया तो वो इराक पर प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ने इराक में सैन्य अड्डा बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए हैं और जब तक इराक इस खर्चे की भरपाई नहीं करता वो वहां से सैनिकों को नहीं हटाएंगे। ईरान को वो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने अगर पलटकर हमला किया तो उसके 52 ठिकाने हमारे निशाने पर हैं। ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल मामला 3 देशों ईरान, इराक और अमरीका के बीच का है। लेकिन जानकार बताते हैं कि मध्य पूर्व में गहराते तनाव की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। कुछ इसे युद्ध की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट इसे समझाते हैं।
What we have at the moment is a very dangerous tinderbox situation.
जो फिलहाल हम देख रहे हैं वो एक विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि दोनों पक्षों ने ही एक दूसरे की ताकत और मंशा को कम करके आंका था। ईरान को लगा कि अमेरिका मध्य पूर्व से बाहर जाना चाहता है और वो छद्म युद्ध से अपनी जगह बना लेगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वहीं अमेरिका को लगा कि ईरान पर प्रतिबंध और कड़े होंगे तो उस पर आर्थिक दबाव बनेगा और वो टूट जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा।
इधर जर्मनी का कहना है कि अमेरिका के इस कदम का बड़ा असर हो सकता है और यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों को जल्द बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा है, लेकिन इतना तो साफ पता चलता है कि मामला अब इतना भी सीधा नहीं रहा और ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। और अब वक्त है कार्यक्रम में आपकी चिट्ठियां सुनने का, यानी आपकी राय सुनने का।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज एक बार फिर मैं आपकी ईमेल और चिट्ठियों के साथ अकेला हाजिर हूँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं का नाम कम से कम हम इस प्रसारण में ले लें, उनकी चिट्ठियां ले लें, उनका संदेश ले लें। रियाद सऊदी अरब से शब्बीर खन्ना ने कई बार फोन किए हैं और ईमेल अब आया है। लिखते हैं, कभी सोचा नहीं था कि आपको आखिरी बार नमस्कार कहना पड़ेगा। बहुत समय पहले शिवकांत भाई से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि अगर मरते वक्त मैं होश में हूं तो मुझे बीबीसी रेडियो सुना देना, लेकिन लगता नहीं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। आंखों में आंसू भर जाते हैं और लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मर गया हो। आपका बदनसीब श्रोता शब्बीर खन्ना। खाड़कलाट बेलगाम कर्नाटक से डॉक्टर अयूब परकुटे लिखते हैं, कल शाम जेएनयू में हुई हिंसा के बारे में जानने के लिए मैं उतावला था। मैं कोई भी टीवी शो नहीं देखता, पर अफसोस आज नमस्कार भारत भी नहीं सुन पाया। कोई तो मजबूरी रही होगी इसे बंद करने में, मगर इससे हमारे लिए पुख्ता जानकारी के सभी रास्ते सीमित हो गए हैं। इंद्रपाल जटाना लिखते हैं, मैं पिछले 7 साल से नमस्कार भारत का श्रोता हूं। पहले मेरे पिताजी सुना करते थे, जिनसे मुझे बीबीसी के बारे में जानकारी मिली। मैं कनाडा में रहता हूं। जब से आपने रेडियो कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की है, मैं बहुत दुखी हूं। अगर आप बजट के कारण ऐसा कर रहे हैं तो हमें बताइएगा, हम पैसे दे सकते हैं। लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से फारूक अब्दुल्ला फिजा ने लिखा है, बीबीसी रेडियो का बंद करना सच्चे लोगों के साथ बहुत बड़ी बेवफाई है। कुवैत से मोहम्मद अमीरुद्दीन ने ये ईमेल भेजा है, लिखते हैं, नमस्कार भारत के बगैर जिंदगी बहुत सूनी सूनी लगती है। वैसे तो खबरों के स्रोत बहुत हैं, पर जब तक बीबीसी नहीं सुन लेते चैन नहीं पड़ता। और जालंधर से ये ईमेल आया है कर्नल पीएस रंधावा का, ये भी पुराने श्रोता हैं। लिखते हैं कि जाहिर है कि बीबीसी के श्रोताओं के विरोध एवं न चाहते हुए भी बीबीसी रेडियो बंद हो रहा है। मेरे कुछ एक सुझाव इस प्रकार हैं, कृपया डिजिटल माध्यम से प्रसारण जारी रखने की कोशिश करें, पॉडकास्ट शुरू करें, बीबीसी को पेड सर्विस बना दें। और श्रीगंगानगर राजस्थान ग्राम पोस्ट मिर्जेवाला से संदीप कुमार भुवाल ने लिखा है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो बेचारा श्रोता क्या करे, आप तो सरकारों से भी निर्दयी निकले। मैं एक 35 वर्षीय अध्यापक हूँ, पहली और शायद आखिरी बार पत्र लिख रहा हूँ। 1990 में जब मैं 6 साल का था, तब से दादाजी के साथ रेडियो पर बीबीसी सुन रहा हूँ। बीबीसी की आदत इतनी हो चुकी है कि सुने बिना नींद ही नहीं आती। और रानीपुर कल्याणगढ़ मानिकपुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश के देवी दीन यादव लिखते हैं कि मैं इस समय 19 वर्ष का हूँ, मैं बचपन से बीबीसी सुनता आ रहा हूँ। बीबीसी के बंद होने की खबर सुनकर सदमा सा लगा है, प्लीज अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। बीबीसी हम युवाओं के लिए एक वरदान के समान है। ये मेरा पहला ईमेल है, कृपया शामिल जरूर करें। सिरसा हरियाणा से बलवंत राय शेखुपुरिया ने लिखा है, बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस जो मेरे साथ हमेशा रही 1983 से 2020 यानी 2020 तक, अब जाने क्या हो गया कि आप लोग हमें यूं ही अधर में छोड़कर चले। न शिकवा है न कोई गिला है, बस जुबां पर तेरा नाम लेकर बाकी वक्त गुजार लेंगे, हो सके तो लौटा देना हमारा बिछड़ा कारवां। सर्वेंद्र कुमार राजपूत ग्राम पुरैनी जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, जब से मैंने आपके रेडियो प्रोग्राम बंद करने के बारे में सुना है, तब से अत्यंत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरे डैडी आपके नियमित श्रोता हैं और उन्हें रेडियो पर आपको सुनने की जैसे आदत सी हो गई है। आपसे निवेदन है कि प्रोग्राम बंद ना करें। वडोदरा गुजरात से गौरी जोशी ने लिखा है और ये अपने पिता मनीष जोशी की तरफ से ईमेल लिखती हैं, कहती हैं, मेरे पिता 20 वर्ष की उम्र से बीबीसी सुन रहे हैं, 5 साल पहले मैंने भी सुनना शुरू किया। हमें बहुत दुख हुआ कि आप सर्विस बंद कर रहे हैं। लंबी चौड़ी चिट्ठी है, बहुत सारी लंबी चिट्ठियाँ आई हैं, लेकिन सबको शामिल भी नहीं कर सकते हैं। अंतिम चिट्ठी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से नरेश और कविता फगीरिया ने लिखी है, लिखते हैं, बीबीसी रेडियो बंद करना हमें कतई मंजूर नहीं है, हमें आधे घंटे का कार्यक्रम चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो बीबीसी श्रोताओं का हम एक ट्रस्ट बना सकते हैं। मेरे दादाजी बीबीसी रेडियो सुनते हैं पर वो पढ़े लिखे नहीं हैं और मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करते, उनका क्या होगा, कृपया अपने फैसले पर फिर से विचार करें। बहुत ही भावनाओं से परिपूर्ण भरी हुई चिट्ठियां हमारे पास आ रही हैं, ईमेल आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी जो भी भावनाएं हैं हम इस फोरम पर लगातार प्रसारित करते रहेंगे। हमें लिखिएगा बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल तुरंत लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम के हिंसा के बाद आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जेएनयू हिंसा मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी तादाद में लोगों ने जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। सुलेमानी बगदाद में अमरीकी हमले में मारे गए थे। फ्रांस के वित्त मंत्री बर्नो ले मेर ने कहा है कि अगर अमेरिका फ्रांस पर व्यापार प्रतिबंध लगाता है तो फ्रांस उसका जवाब देगा। इससे पहले फ्रांस ने गूगल और अमेजन पर नया डिजिटल कर लगाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।